نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سب سے پہلے تو آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب کے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ایک نفع مند مجلس بنا دے کہ ہم جو یہاں پہ آئے ہیں، دور نزدیک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہوئے ہیں، تو اللہ کرے کہ یہاں پہ آپ کا بیٹھنا واقعی آپ کی زندگی کے لیے تبدیلی کا باعث بنے. یہ محض صرف ایک درس نہ ہو کہ جو سن کے آپ چلے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کرے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے آپ کچھ لے کر اٹھیں اور وہ واقعی آپ کی زندگی کے ساتھ چلنے والا ہو انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اسی وجہ سے ہم بہت ساری وہ چیزیں جو غیر مسلم اپنے لیے ہو سکتا ہے کہ جائز سمجھتے ہوں، نارمل سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک اور صاف دین عطا فرمایا جس میں کوئی کجی نہیں اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور یہ وہی دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما دیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اسی دین کو پس پشت ڈال چکے ہیں، اسی دین کو بھول چکے ہیں، اور اسی سے جان چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک ڈریم ورلڈ ہے، اس کو ایسے ہی سمجھ لیں. ڈریم ورلڈ ہوتی ہے نا، خوابوں کی دنیا، تو یہ خوابوں کی دنیا ہے، اور ریالٹی وہ ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے. لیکن ہم گویا ہم سب سو رہے ہیں، اور جب سویا ہوا بندہ کچھ خواب میں دیکھتا ہے تو آنکھ کھلنے پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خواب تو ختم ہو چکا. خواب میں خواب وہ بادشاہ بنا ہوا تھا، خواب فقیر تھا، خواب اس پہ کوئی مصیبت تھی، خواب کوئی خوشی دیکھ رہا تھا، لیکن خواب ختم تو سب کچھ ختم. اس کے بعد نظر آتی ہے حقیقت کہ اچھا نہیں، میں تو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، خواب میں تو میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کہیں اور دیکھ رہی تھی. تو یہ جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں بن سکتے. اسی طرح اس دنیا میں ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم رہ رہے ہیں نا سب لوگ، تو یہ ایک ہم خواب دیکھ رہے ہیں، سمجھ لیجئے. یہ اس میں اور جو نیند میں آپ خواب دیکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ جو نیند میں آپ خواب دیکھتے ہیں نا، اس میں کسی عمل کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے، کسی چیز کا حساب کتاب نہیں ہے، لیکن اس خواب کے ہر عمل کا حساب آپ کو دینا ہے. اس خواب میں ہر عمل کی ذمہ داری آپ پر ہے. اس دنیا کے بعد جب ہم اللہ کے حضور آگے کھڑے ہونے والے ہیں، تو وہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا، ہمارے فیصلے سنائے گا. اس وقت انسان سوچے گا، ہائے وہ ان لمحوں کے اوپر کہ جو میں نے اللہ کی خاطر نہیں گزارے، ان کو انسان سوچے گا اور ان پہ بڑا ریگریٹ کرے گا، بہت پچھتائے گا کہ اللہ وہ وقت میں نے ضائع کر دیا، اللہ زندگی کے اتنے سال تو نے مجھے دیے اور میں ان میں کچھ نہ کر کے آ سکی. تو اس دن اتنے پچھتاوے اس لیے ہوں گے کہ جو میزان عمل ہے وہ ایک ایک عمل سے، یعنی جب کہا گیا نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی انسان جب عمل کرے گا تو اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا، اچھا عمل کرے گا اس کا بھی، اور جو برا عمل کرے گا تو اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذرہ ذرہ وہاں پہ تلے گا، وزن ہوگا ذرے کا، تب انسان بڑا پچھتائے گا، کیونکہ کسی کا ایک ذرے کا عمل اس کو جنت میں لے جائے گا. اور کسی کا، یقین کریں، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ایک ذرے کے برابر عمل اس کو جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ وہ ایک ہی برائی تھی جو بڑھ گئی گناہوں کے میزان میں. تو ہم جو یہ بھول چکے ہیں نا کہ ہم ایک ٹیسٹ میں ہیں، ہم ایک امتحان میں ہیں، और अल्लाह ताला इस इम्तिहान में रख के हमें आजमा रहा है, हमें देख रहा है कि हम में से कौन है जो इस इम्तिहान में पूरा उतर के मेरी जन्नत का मुस्तहिक है, हकदार है। जैसे समझ लें कि आप किसी को नौकरी देना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट होते हैं, पता नहीं क्या क्या सिलसिले होते हैं, तब जाके उसको रखते हैं ना। तो अल्लाह की जन्नत ऐसी सस्ती तो नहीं है, उसने अपनी जन्नत के लिए भी लोगों की सिलेक्शन करनी है, कौन मेरी जन्नत में जाने के काबिल है। अब ये सिलेक्शन हो रही है, अब इसके अंदर आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, आजमाया जा रहा है, देखा जा रहा है आप काबिल भी हैं कि नहीं। अगर नहीं काबिल है, कचरा कबाड़ कूड़ा है कोई, तो वो कूड़े को कांट डालते हैं गार्बेज में, तो गार्बेज अल्लाह के यहाँ क्या है, जहन्नुम। अल्लाह ताला उन गार्बेज को जहन्नुम में डाल देगा। और जो सुथरे साफ पाक और वाकई अपने आप को प्रूव करेंगे कि मैं जन्नत में जाने के काबिल है, वो ही जाएंगे। लेकिन हम ये सारा सबक भूल चुके हैं, अल्लाह के फरिश्ते नोट कर रहे हैं हर बात को, हम भूल चुके हैं, वो एक एक लफ्ज हमारा लिख रहे हैं, हम भूल चुके हैं, अल्लाह हमसे हिसाब लेगा वो, हम भूल चुके हैं। हमें यही नहीं पता हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम ये नहीं जानते। हम 70-80 साल की उम्र को भी पहुंच जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता हम दुनिया में आए हैं तो हमारा कोई मकसद है। देख नहीं रहे आप अपने इर्द गिर्द कि दुनिया में आज मोमिन है या काफिर, सब दुनिया में इतने मस्त हैं, इतने मस्त हैं कि याद ही नहीं है कि एक दिन वापस जाना है, वापसी का भूले में। लेकिन इससे वापसी डिले नहीं होनी, एक दिन अचानक ही वो टाइम आ जाएगा जब हमने लौटना है। इस लौटने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज हमें एक मौका दिया, हम यहाँ पे जमा हुए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जो आप वो सवाल सब खुद अपने आप से करेंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जब किसी को बताना होता है ना, तो फिर हम सवालों के जवाब उस तरह से देते हैं जैसे जिससे लोग राजी हों, ठीक है, जिससे लोग खुश हो जाएं हमारे इर्द गिर्द वाले। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी ना, इसका जवाब आप अपने आप को दें। आप बूढ़े हैं या जवान हैं, आप जिधर जिधर भी बैठे हुए हैं, सिर्फ खुद को आपने सोचना है। ये नहीं देखना आपके साथ कौन बैठा हुआ है, ये नहीं देखना, किसी और का ख्याल नहीं जहन में लाना, ना किसी औलाद का, ना बहन भाइयों का, ना फलां चीज का, ना किसी चीज का नहीं। सिर्फ सवाल अपने आप से करें। रेडी हैं आप सवाल सुनने के लिए? आपसे सवाल मेरा ये है, आसान सा सवाल है, मगर मुझे जवाब सच्चा चाहिए, मगर मुझे नहीं चाहिए, अपने आप को ही दें आप, ठीक है। सवाल यह है कि आपकी जिंदगी में सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, क्या चीज है जो सबसे ज्यादा अहम है आपके लिए जिंदगी में, जो आप हासिल करना चाहते हैं या जिससे आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत है, जाहिर है वो ही आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी ना, जिसको यू लव द मोस्ट, वो क्या चीज है। अब इसमें कोई आप ये भी कह सकते हैं कि मसलन एक और तरह से पूछूं तो इम्पोर्टेंस किस चीज़ की ज़्यादा है, क्या चीज़ है आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम। अब वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, घर के काम हो सकते हैं, बाहर के, बच्चों के, शौहर के, शॉपिंग, दावतें, मगर क्या चीज़ है उसको डिफाइन करें अपने आप से। इस चीज़ का इकरार आपने करना है कि हाँ यही मेरी ज़िंदगी में नंबर 1 प्रायोरिटी है, क्योंकि फिर जो नंबर 1 प्रायोरिटी होती है उसको सबसे ऊपर आप रखते हैं। और लेकिन इसमें देखें, बहुत सारे लोग जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है ना किसी के सामने, तो वो कहते हैं, अब मसलन मजलिस में अभी पूछ लिया जाए कि आप बताएं ना, तो हर कोई कहेगा मैं ये मेरी प्रायोरिटी है कि जी मैं बड़ी अच्छी मुसलमान बन जाऊं, या मैं जन्नत में चली जाऊं, या मेरी प्रायोरिटी है मैं कुरान पढूं, या मेरे बस इस किस्म की बातें करेंगे, क्योंकि हमने सबको जो राजी करना हुआ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी को भी नहीं बताने की जरूरत, ईमानदारी से अपने आप में देखें क्या मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी आखरत है या ये दुनिया है, क्या अल्लाह की रजा है या बंदों की रजा है, अल्लाह की मोहब्बत है या किसी और की मोहब्बत है। अगर देखा जाए ना ईमानदारी से, तो ऐसे लोग दुनिया में, पूरी दुनिया में, या मजलिस में क्या बात है, या आपके और मेरे यहाँ की क्या बात है, पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि वाकई जिनकी नंबर वन प्रायोरिटी है कि अच्छे मुसलमान बन जाए, या जिनकी नंबर वन प्रायोरिटी है कि बस हमें जन्नत मिल जाए और हम उसके लिए काम करें, या अल्लाह की रजा चाहिए। वो तो दुनिया में गिने चुने हैं। असलियत ये है कि हमारी जिंदगी का जो मकसद या नंबर वन प्रायोरिटी, कहीं तो कैरियर बनाना है, कहीं घर खरीदना है, कहीं मालदार हो जाना है, कहीं मे बी कोई सेविंग कर लेना है, रिटायरमेंट की एज तक पहुंचने तक हमारी कोई सेविंग हो जाए, या हम फलानी जगह की सैर कर लें, यूरोप घूम आए, फलां घूम आए, और या बच्चों को हम उनकी शादियां कर दें, बस इस तरह की प्रायोरिटीज हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो, उनकी कोई प्रायोरिटी ही नहीं है, वो बगैर कोई प्रायोरिटी रखे भी जिंदगी गुजारते जा रहे हैं, बस उनको तो ये है कि बस गुजर रही है तो गुजर रही, बगैर सोचे समझे, जो सोच समझ के गुजारे वो तो ये कहते हैं ना, यहाँ तो कई लोगों की, हाँ ये भी होती है कि शोहरत मिल जाए मुझे, मेरी कम्युनिटी में बहुत शोहरत हो। तो अगर हम ये देखें तो इससे अंदाजा लगता है कि हमारी जो भाग दौड़ है ना, वो बस दुनिया 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 है। हम इस दुनिया के साजो सामान से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी आखरत से होनी चाहिए ना, उससे ज्यादा मोहब्बत हमें यहाँ की चीजों से। अगर किसी को ये बताएं तुम्हें एक दिन मर जाना है, वो कहते हैं पता ही है हमें, इसमें कौन सी आप नई बात बता रही हैं। अगर किसी को कहें जहन्नुम के बारे में बताएं, उसके कोई मंजर बताएं, तो कहते हैं लो हम भला पता नहीं है हमें, हम मुसलमान ही तो हैं। जन्नत का कोई शौक दिलाएं, तब भी कहते हैं हमें पता ही है। अच्छा, अगर पता है तो फिर जिंदगी सीधी क्यों नहीं होती, फिर नमाजें मिस क्यों होती हैं, फिर उसकी तरफ तैयारी क्यों नहीं है, फिर उसकी सोच क्यों नहीं है, फिर उसकी फिक्र क्यों नहीं है, फिर अल्लाह की फरमाबरदारी और दीन पे चलना बैकग्राउंड में क्यों चला जाता है। अगर वाकई ये सब कुछ पता है तो हम, अगर अपनी हालत ज़ार देखें तो ये कहना झूठ होगा कि दीन मेरी नंबर वन प्रायोरिटी, क्योंकि देखें दीन को हम लीस्ट पे रखते हैं, हम बेयर मिनिमम पे जीते हैं, बेयर मिनिमम, कि जिससे बस ये हो जाए कि हम मुसलमान की कैटेगरी से ना बाहर निकल जाएं, बस ये। अदरवाइज दीन हमारी जिंदगी में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अगर वाकई रखता होता तो अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा पे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार हो जाते। आपको मैं थोड़ी सी एक मिसाल से बातें करूंगी तो आपको हो सकता है कि आपको ये जो सवाल मैंने आपसे किया, इसका जवाब देने में आसानी हो जाए, क्योंकि जो सवाल है ना, आप के जहन में जो भी जवाब आ रहा है, आप उसके ऊपर अपने आप को पहले दलील दें कि इसकी दलील क्या है। मसलन अगर आप कहती हैं अल्लाह की मोहब्बत मेरी नंबर वन प्रायोरिटी है, तो उसकी दलील दीजिए। दलील के लिए अपने जहन में ही लेकर आए बातें, क्योंकि मैं ये करती हूँ, क्योंकि मैं वो करती हूँ, और अगर आपके जहन में कोई और बात आ रही है तो उसके ऊपर दलीलें दें, लेकिन अपने आप को धोखा ना दें। देखिए लोग तो दूसरों को धोखा जब देते हैं ना, तो हम मसलन मुझे कोई धोखा दे, बहुत गुस्सा आएगा, इसने मेरे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। हम अगर अपने आप से फ्रॉड कर रहे हैं तो एक दिन तो ये धोखा खुल जाना, ये झूठ आज सामने आ जाएगा, और इसका नुकसान हमें ही होगा। कम से कम अब अपने आप से तो सच बोलें, अपने आप से सच बोलिए, दूसरों से क्या, अपने आप से भी नहीं हम सच बोलते, अपने आप को भी एक धोखे की दुनिया में रखा हुआ है। तो जो मैं आपको मिसालें देना चाहती हूँ, उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि शायद हो सकता है जवाब देने में आसानी हो। मसलन दुनिया में आपको कोई, या किसी को बात कर लेते हैं, आपकी नहीं बात करते, दुनिया में किसी से कोई $1,000 का फ्रॉड कर लेता है, तो क्या होता है, वो उसको अदालतों में खींचेगा, सू कर देगा, इसने मेरे से फ्रॉड कर लिया, इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, मैं तो गोली मार दूंगा इसको, और देखो क्यों, इसलिए कि नंबर वन प्रायोरिटी पैसा है, इसलिए कि इसको पैसा बहुत प्यारा है। अगर ऐसा शख्स कहता है कि पैसा मेरी नंबर वन प्रायोरिटी है, तो वो सच्चा है, क्योंकि उसका एक्शन साबित कर रहा है ना, अमल आपका साबित करता है। इसी तरह आप देखें, कोई इंसान है सुबह 6 बजे घर से निकलता है, बजाय फजर का अलार्म लगाने के लिए वो अपने ऑफिस के टाइम के मुताबिक अलार्म लगाता है, इसकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, जॉब या नमाज, अल्लाह या काम। एक बंदा है, वो कहता है, उसको कोई उठाता है, बीवी उठाती है, तो कहता है खुदा की बंदी मुझे सोने दो, मेरे पर रहम करो, मैं सारा दिन का थका हूं, और मुझे आप सोने दो, अभी तो नींद आई है, क्यों मुझे जगाते मेरी नींद खराब करती हो। ठीक है, फजर पे जब बीवी उठाती है। लेकिन अगर वो अपनी जॉब से लेट हो गया, जॉब का टाइम था 6 बजे सुबह, और किसी ने उसको 6 बजे ना उठाया और वो लेट हो गया, तो वही बंदा अपनी बीवी कहेगा, खुदा की बंदी कुछ रहम कर, मैं जॉब से लेट हो रहा था, तूने मुझे क्यों ना जगाया। देखें फर्क पता चलता है ना प्रायोरिटीज का। अपनी डेली लाइफ से जानिए आपकी प्रायोरिटी स्ट्रेट है या नहीं। ये तो हम एक अपने आप को यानी ड्रीम वर्ल्ड में रखे हुए ना कि हम बिल्कुल सही है, ये ना हो कि हमारा धोखा वहां जाके खुले, हम वहां पे रियलिटी में आए। यहाँ पे ही अपने इंसान अगर बात को समझ जाए तो बेहतर है। फिर इसी तरह देखिए, अगर कोई औरत ड्रेसअप करती है तो वो ये देखती है कि आज फैशन क्या है, भले फैशन अल्लाह की नाफरमानी का हो, लेकिन अगर वो ये देख के चलती है कि फैशन क्या है, अल्लाह की रजा उसमें है या नहीं है, मुझे इससे कुछ नहीं, तो उसकी प्रायोरिटी नंबर वन क्या है, अल्लाह या फैशन। अगर आप गाड़ी बेचने जाते हैं, आप माइलेज पीछे करके बेचते हैं सिर्फ चंद डॉलर ज्यादा लेने के लिए, धोखा दे, आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो चंद डॉलर या अल्लाह का हुक्म। इन छोटी छोटी मिसालों से हमें खुद मालूम हो जाता है कि हम कितने पानी में हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियां बताई, तो मुनाफिक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक वो है जो एक गधे की तरह है, कि दिन भर गधा क्या करता है बताएं, खाता है और लोड उठाता है, मजदूरी करता है ना, और सारी रात वो मुनाफिक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी रात पूरा दिन गधे की तरह गुजारता है और सारी रात मुर्दार की तरह सोता है। मुर्दार कैसे सोता है कि वो तो यानी मुर्दार, मुर्दा जो हो चुका है वो तो जागता ही नहीं है ना, यानी नमाज कब हुई, अजान कब हुई, क्या हुआ, उसको कुछ पता नहीं, वो नहीं उठेगा। फिर आगे फरमाया इस हदीस में, दुनिया के तमाम कामों का माहिर है, आलिमुन बि अम्र दुनिया, दुनिया के काम जो है ना उसमें तो इतना तेज है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी, फाइनेंसिंग की बात पूछ लो वो पता, बिजनेस की बात पूछो वो पता, सियासत का पूछो वो सारा इल्म, आज इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है उसका पता, गोल्ड मार्केट में क्या हो रहा है वो पता, मास्टर है दुनिया का। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखरत के मामलात में जाहिल है, ये पूछ लो वजू का तरीका क्या है तो वजू भी सही नहीं करना आता, ये पूछ लो अल्लाह किन कामों से राजी होता है वो नहीं पता, ये पूछो वो अपने कलाम में क्या कह रहा है, कुरान में क्या कहा है उसने, वो तुमसे क्या चाहता है, कुछ नहीं पता, और फिर उस पर फख्र भी करता है, हमें तो नहीं ये दीन वीन गए, हमें नहीं ये चक्रों को पता, हम तो भाई सीधा सीधा नमाज रोजा करते हैं, हमसे ज्यादा ना पूछो। सुभान अल्लाह। तो फरमाया वो ऐसा इंसान है कि वो दुनिया का तो माहिर और आखरत के बारे में जाहिल। आप बताएं कि आज आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं नजर आते, क्या आपको अपना आप नजर आता है कि मैं कुकिंग की माहिर, मैं घर की सफाइयों की माहिर, मैं घर की डेकोरेशन की माहिर, मैं शॉपिंग में मुझे ये पता है कहाँ से सेविंग होगी, किधर सेल पे क्या चीज लगेगी, किस वक्त आएगी सेल पे, कहाँ से क्या चीज उठानी है, ये तो सारी चीजें मुझे पता है, लेकिन नमाज में खुशू कैसे आएगा वो नहीं पता, रोजा किन चीजों से टूटता है वो नहीं पता, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है वो ही नहीं पता। अब बताएं कि ऐसी किसी बंदी का नंबर वन प्रायोरिटी आप बताएं कि क्या है, दुनिया या आखरत। क्या फिर हम कह सकते हैं जी हम जन्नत के मुस्तहिक हैं, कि जब हम दुनिया के मामले में ऐसे माहिर और आखरत के बारे में ऐसे जाहिल। हम देख तो लें कि दुनिया है क्या चीज, दुनिया को तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने इसको डेकोरेट कर दिया, किन चीजों से, औरतें हैं, माल है, बेटे हैं, घोड़े हैं, ट्रेजर्स हैं, खजाने, इनसे आज आप गाड़ियां कह लें, इनसे अल्लाह ताला ने इसको डेकोरेट किया है, लेकिन फरमाया कि ये टेम्प्रेरी इंजॉयमेंट है, टेम्प्रेरी है। क्या टेम्प्रेरी नहीं है, क्या आपने किसी को देखा अपने साथ वो अपने घर को भी ले जाए कब्र में, किसी को देखा, क्या आपने किसी को देखा अपने साथ अपनी पूरी वार्डरोब ले जाए, या किसी को देखा अपने, औरतें इतनी जेवर संभाल संभाल के रखती हैं, किसी को देखा जेवर साथ ले जाए कब्र में, किसी को भी नहीं। इसका मतलब ये है, ये तो टेम्प्रेरी है, ये दुनिया तो इतनी वक्ती है, लेकिन देखो हम सब इसके माहिर बन रहे हैं, इसमें मास्टर्स करना चाहते हैं और उसको अकलमंद समझते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर ले, जो स्टोरों पे सेलों पे ज्यादा चीजें ले सके, जो इस दुनिया में इतनी माहिर हो, जिसका घर सबसे ज्यादा डेकोरेटेड हो, जो इसमें यहाँ पे जॉब कर रही हो, जो चार पैसे कमा के घर लेकर आए, वो हमारे नजदीक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, हमारी प्रायोरिटी फिर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक दफा ये समुंदर के किनारे पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि ये जो पिंकी फिंगर है, ये इसको पानी में डाला और निकाला, तो उंगली पे क्या लगा हुआ था? सिर्फ तरी रह गई थी, वेटनेस, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, दुनिया आखरत के मुकाबले में इतनी सी है बस, जितना इसके ऊपर पानी लगा रह गया है ना, कितना पानी समंदर के मुकाबले में, कितना पानी था जो इस उंगली पे रह गया? आप एक जग में ही उंगली डाल के निकाल लें, कितना पानी रह जाएगा? कुछ भी नहीं। इतनी सी है ये दुनिया आखरत के मुकाबले में। अगर दुनिया आखरत के मुकाबले में इतनी कम है, तो सोचो फिर हम कैसा धोखा खा रहे हैं, किसके पीछे हम भाग रहे हैं? वो जो इतनी कम है और उसको छोड़ के जो समंदर के बराबर है, हमने उसको छोड़ा हुआ है। जब आखरत के बारे में देखें, तो आखरत इतनी ह्यूज है। आखरत से मतलब क्या है? कि वहां का वक्त भी, वहां की नेमतें भी, वहां की जन्नतें भी, वहां की जिंदगियां भी इतनी बड़ी हैं इस दुनिया के मुकाबले में, दुनिया की हर चीज के मुकाबले। खुद अंदाजा करें ना, आखरत में यानी जन्नत के अंदर आप देखें तो घर कैसे हैं, उनकी ईंटें किस चीज की हैं? गोल्ड की। उनके बीच में जो ईंटों के बीच में जो सीमेंट लगाते हैं ना, आप अपने हमारे मुल्कों में होता है, यहाँ पर तो बिल्कुल ही लकड़ी के घर हैं, तो उनके बीच में सीमेंट लगाते थे ना, गारा लगाते थे, वो मिस्त्री वो लगाता है ताकि ईंटों को जोड़े। तो जन्नत में ये सीमेंट क्या है? मस्क, परफ्यूम, वो है जिस जो गारा लगाया जाएगा। और जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो किस पे कदम रखेंगे? पत्थरों पे, मट्टी पे। वहां के पत्थर क्या है? पर्ल्स एंड डायमंड्स। सुभान अल्लाह, जहां दूध की नहरें हैं, जहां शहद की नहरें हैं, जहां पे शराब की नहरें हैं, उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं उस दुनिया के साथ? कहां ये दुनिया और कहां वो जन्नत? आप उसका सौदा कर रहे हो और दुनिया के पीछे भाग रहे हो, जिसके दरख्त ऐसे कि जिनका साया इतना घना है कि 40 साल भी सवार दौड़ता रहे उसके साये में, तो उसका साया नहीं खत्म होना, दौड़ाता रहे अपनी सवारी। इतने बड़े बड़े पत्ते हैं उसके कि जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो ऐसा म्यूजिक पैदा होता है कि इंसान को सब जो दुनिया में सुना था सब भूल जाए, जो कभी ना सुना हो। तो हम इस दुनिया के पीछे उस जन्नत की नेमतों को ही भूल चुके हैं। ये दुनिया तो क्या है, जहां पे हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, स्ट्रेस भी है, कहीं डिप्रेशन है, कहीं कोई बीमारियां हैं, कहीं कोई थकान है, कहीं कितना, कहीं बुढ़ापा है, कितनी हमारे साथ तकलीफें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमें फिर भी ये इतनी प्यारी है कि इसकी खातिर हम जन्नत का सौदा करते, उसको बेच दें। ये नहीं मैं कहती कि दुनिया को छोड़ दो, इसके मामलात को छोड़ दो, मगर कभी गौर तो किया करें कि इस दुनिया में रहते हुए, इसके कामों को करते हुए क्या अल्लाह की रजा है, जिसमें मेरा रब राजी होता है, किस तरह इन कामों को इस तरह से अंजाम दूं, किस तरह से मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं, क्योंकि रहबानियत हमारे दीन में नहीं है। आपको ये नहीं कहा गया कि आप अब जंगल में चले जाएं और बस वहीं पर रहा करें, नहीं, इस दुनिया में औलाद की परवरिश भी करनी है, शौहर के साथ भी रहना है, घरदारियां भी करनी है, आपने खाना भी बनाना है, सफाइयां भी कर, सब चीजें करनी है, मगर कैसे रब को राजी करते हुए करोगे? इसको कभी सोचा, कभी गौर व फिक्र किया इस पे? कभी सोचा मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है, कैसे दिखाऊंगी? अल्लाह पूछेगा नहीं कि 50 साल, 60 साल, 70 साल तुम्हें जिंदगी दी, क्या करके आई हो मेरी बंदी? जब वो अपने सामने खड़ा करके ये सवाल करेगा मुझसे, मैं क्या जवाब दूंगी? हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको 60 साल की उम्र मिल गई, उसके तमाम उजर खत्म हो गए, अब उसके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कहेंगे मैंने तुम्हें इनफ टाइम दिया था, बहुत मौका दिया था तुम्हें, बहुत वक्त था तुम्हारे पास कि अगर तुम अपने आप को संवारना चाहते तो संवार सकते थे, लेकिन फिर भी अगर उसने फायदा ना उठाया तो उस दिन इंसान कहेगा या अल्लाह एक दफा और दुनिया में भेज, तो किस लिए भेजें? क्या दुनिया में नहीं इतना टाइम मिलेगा, मिला था? क्या तुम्हें दुनिया में इतना वक्त नहीं मिला था कि तुम अगर खुद को बदलना चाहती तो बदल सकती थी? आपको मालूम है कि जब लोग जहन्नुम के किनारे खड़े होंगे ना, जहन्नुमी, तो उनसे फरिश्ते सवाल करेंगे। सूरह मुल्क जो लोग पढ़ते हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा, सूरह मुल्क में भी ये जिक्र आता है, सूरह जुमर में भी आता है कि फरिश्ते सवाल करेंगे, क्या कोई तुम्हारे पास बताने वाला नहीं आया जो तुम्हारे रब की आयात तुमको पढ़ के सुनाता? क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया था? है, देखिए फरिश्ते कितने सियाने हैं, कितने अक्लमंद हैं, उनको भी ये पता है कि जिसने रब की आयात दुनिया में पढ़ी होती कभी इस अंजाम तक ना पहुंचता। कौन सी आयात की बात कर रहे होंगे वो? कौन सी आयात है आपके पास? है कोई आयात? है ना कुरान। वो पूछेंगे तुम्हारे पास तुम्हारे रब की आयतें आई नहीं थी? क्योंकि उनको मालूम है कि जिस जिस के पास ये पहुंच गई, जिस जिसने इसको पढ़ लिया, वो जरूर कोशिश करेगा कि इस अंजाम से बच जाए। जो कलाम आज हमारे घरों में पढ़ा हुआ है ना कुरान की सूरत में, जिसको हम कुरान कहते हैं, वो इसी के बारे में पूछेंगे। पढ़ा नहीं था तुमने? उसमें तो लिखा हुआ था साफ, उसमें तो साफ बताया हुआ था, उसमें तो अल्लाह का हुक्म पता था, पता चल सकता था तुम्हें, अल्लाह की रजा पता चल सकती थी, कैसे अल्लाह को राजी करना है, कैसे जहन्नुम से बचना है, उसमें तो सब लिखा हुआ था। क्या तुमने पढ़ी नहीं थी? अगर तुम पढ़ लेते तो कभी यहां तक ना पहुंचते। ये बात हमें आज नहीं समझ आती ना, कोई अगर बताए भी तो कहते हैं तुम हमें क्या बताते हो, हमें तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। लेकिन जब इंसान की जिंदगी ये साबित नहीं कर रही तो इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता। हम आज यकीन करें ऐसे हैं जैसे अंधा होता है ना, अंधे को देखा वो कैसे चलता है बेचारा? जाहिर है आंखें नहीं, बिनाई नहीं है उसके पास, कभी इधर ठोकर खाता है, कभी उधर ठोकर खाता है, कभी इससे पूछता है, कभी रास्ते के बारे में किसी की रहनुमाई चाहता है, किसी का हाथ पकड़ना चाहता है, क्योंकि वरना वो गिरता पड़ता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान कुरान के बारे में नहीं जानता, उसको उसने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं सीखा हुआ, वो बिल्कुल इस अंधे की तरह है कि वो अंधा टकरे मारता फिरता है, उसको रास्ता सुझाई नहीं देता। इसी तरह इसकी जिंदगी भी ऐसे ही है, कभी इससे पूछ लिया, अच्छा ये बता दो कि नमाज सीधे कैसे पढ़नी है, अच्छा ये बता दो ये सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही, अच्छा आप ये बता दें कि ये हलाल है कि हराम है, अच्छा आप ये बता दें कि रोजा इन चीजों से टूटता है कि नहीं टूटता। वो तो बेचारा हर वक्त बस इन्हीं भूल भुलाइयों में रहता है, कभी किसी से पूछ लिया, उससे एक बात पूछ ली, उससे एक बात पूछ ली, क्योंकि वो अंधा है ना। और जो इंसान कुरान समझ लेता है, इसको पढ़ लेता है, इसको सीख लेता है, वो ऐसे ही है जैसे किसी इंसान के पास आंखें हैं, बीनाई है। जिसके पास बीनाई होगी उसको तो रास्ता खुद नजर आता है, वो तो खुद उस पर चलने लगता है, उसको अब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। वो जान लेता है कि रास्ता कौन सा सीधा है, वो ठोकरें नहीं खाता, ब्लाइंड तो ठोकरें खाता है ना। इसीलिए हम आज इधर ठोकर खाते हैं, अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो इतनी जिंदगी गुजर गई हमें पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? इसलिए कि ब्लाइंड रहे हैं, ब्लाइंड रहे। और आज तक कई लोग प्रेफर करते हैं कि वो ब्लाइंड ही रहे। लेकिन जो ऐसा करते हैं, याद रखें अल्लाह का कुरान कहता है उनके बारे में, यानी ये तो मेरी कोई बताई हुई बात नहीं, मैं आपको कुरान की ही आयात में से बताती हूँ कि अल्लाह का कुरान कहता है सूरह ताहा में आयत नंबर 124-125 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा तो बेशक उसके लिए दुनिया की गुजरान भी तंग होगी। या इससे मुंह मोड़ने का मतलब क्या है कि जब कोई आपको कुरान की तरफ बुलाए, इसको सीखने, इसको पढ़ने की तरफ लाए, आ जाओ भैया आप कुरान सीखो, तो आप क्या सोचते हैं कि वो बंदा बुला रहा है? नहीं, वो नहीं बुलाता, वो अल्लाह बुला रहा होता है, वो अल्लाह की तरफ से कॉल होती है। अब आप उसके ऊपर लबाई कहें या ना कहें, ये आपकी मर्जी है। अब अल्लाह ताला आपको इनवाइट करें, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते तो आएंगे नहीं यहाँ पे, आके आपको इन्विटेशन तो नहीं देंगे ना, कोई रसूल अब आने वाले हैं। अब क्या होगा? अब तेरे जैसे बंदे ही होंगे जो कहेंगे आ जाओ भाई आप मिलके हम सीख लेते हैं, ना मुझे कुछ आता है ना आपको कुछ आता है, चलो आओ मिलके बैठते हैं और इस कलाम को सीखें। ठीक है, अब आप अगर कोई इंसान उसके ऊपर इनकार कर देता है, तो याद रखे अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया कि उसकी दुनिया की जिंदगी भी तंग हो जाएगी, तंग हो जाती है दुनिया की जिंदगी। इसमें खुशियां नहीं रहती, इसमें सकून नहीं रहता, और हम उसे कयामत के दिन अंधा उठाएंगे। समझ आई बात? ये अभी जो मैंने आपको बात की ना, वो इससे प्रूव होती है। वो उस अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम उसे कयामत के दिन अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, ए मेरे रब, तूने मुझे क्यों अंधा उठाया, जबकि मैं दुनिया में तो देखता था, दुनिया में तो मेरे पास आंखें थी। अब ये दुनिया में जो जो आपके पास आंखें हैं ना, ये तो एक, यानी आपको लगता होगा कि मैं देखने वाली हूँ, हालांकि अगर कुरान जिंदगी में नहीं है तो अंधे हैं। वो कहेगा, मैं तो देखता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम्हारे पास इसी तरह हमारी आयात आई थी और तुमने उनको भुला दिया, इसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे, जैसे तुमने हमारे कलाम को भुलाया, इसी तरह हम बदला दिया करते हैं उसका जो हद से गुजर जाने वाला होता है। आप देखें, आप इससे क्या पता चला कि जो दुनिया में अल्लाह के कलाम से अंधा बन के रहा ना, अल्लाह का कलाम है हर एक के घर में, लेकिन उससे अंधे बने हुए, उससे आंखें फेरी हुई हैं, उससे मुंह मोड़ा हुआ है, तो कयामत के दिन यही चीज जाहिरन मालूम हो जाएगी कि इंसान अंधा होगा। तब वो सोचेगा, हाय, अब सोच लें आप हशर के मैदान में, जहां पे कोई साथ देने वाला नहीं, यहां पे तो आपके ऊपर तरस खा के, किसी की आंखें नहीं है उसके ऊपर तरस खा के लोग उसको रास्ता क्रॉस करा देते हैं, कोई उसकी मदद कर देता है, हाय बेचारा अंधा है। वहां पे तो कोई नहीं मदद के लिए आएगा, वहां पे तो लोग कहेंगे अंधा है तो हमारी क्या, हमारी तो अपनी हमें पड़ी हुई है, हम इसकी क्या मदद करें। तो आप बताइए कि क्या आप उठना चाहेंगे कि वहां पे अंधे उठें? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। आंखें कितनी प्यारी होती हैं, ये नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया में भी कोई इससे महरूम नहीं रहना चाहता। तो कयामत के दिन जो अफरा तफरी का दिन है, जो ऐसा दिन है जिसमें किसी अपने खून के रिश्ते को भी दूसरे की परवाह ना होगी, उस दिन में कोई अंधा बन जाए तो कौन हमदर्दी करने वाला होगा उससे? तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, जिसने मेरे जिक्र से इस दुनिया में मुंह मोड़ा वो अंधा ही उठेगा। और देख लें फिर, जो मैं आपको बात कह रही हूं कि जहन्नुम के आगे वो खड़े होंगे ना, तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे सामने तुम्हारे रब की आयत नहीं आई। अच्छा, अब ये कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सवाल जवाब कहाँ पे हो रहा होगा? जहन्नुम के गेट पे। आप वो कहेंगे, जब दुनिया में तो जाहिर है उनको किसी ना किसी ने तो बताया था ना, अब हैरान भी होंगे कि ये हो क्या रहा है। वो कहेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए, क्या तुम्हारे पास अल्लाह की आयात नहीं आई, क्या तुम्हारे पास कोई सुनाने वाला नहीं आया? अब वो कहेंगे, आया तो था, हमारे पास आया था, बताने वाला भी आया था, लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुनी। क्योंकि वाकई जिंदगी में कई दफा बहुत सारे लोग आपको भी मिले होंगे जिन्होंने आपको कुरान की दावत दी होगी, जिन्होंने आपको अल्लाह की तरफ बुलाया होगा, उसके दीन की तरफ बुलाया होगा, नेकी की बात कही होगी, अल्लाह की बात पहुंचाई होगी। यकीनन कोई नहीं ये कह सकता, नहीं आज तक मैंने सुनी ही नहीं, यकीनन पहुंचाई होगी। लेकिन इंसान क्या कहता है, नहीं सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो उस दिन जाके कहेंगे कि हमें आया था बताने वाला, हमें आया था डराने वाला, लेकिन हमने उनकी बात ही नहीं सुनी। सब इतराफ करेंगे, सब मान जाएंगे, बार बार उनको समझाया गया दुनिया में, बार बार बताया गया, लेकिन उन्होंने नहीं मान के दिया। तो देख लो कि ये नहीं कि अचानक से कुछ वहां पे हो जाना है, अचानक का मामला आखरत का मामला नहीं है, ये वही है जो इंसान ने किया होगा उसी को पालेगा अपने सामने। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में भी, अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि बेशक इंसान के लिए वही कुछ होगा जिसके लिए वो कोशिश करता रहा है। तो ये जो आपकी कोशिशें हैं, जो आपकी भाग दौड़ है, जिस तरफ आप दौड़ रहे हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूं, अपनी प्रायोरिटीज को बताएं कि क्या है, क्या है आपका मकसद, क्योंकि इसी के मुताबिक जजा होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अन्न सअयहु सौफ युरा, क्योंकि जो अल्लाह ताला देख रहे हैं, जो भी तुम्हारी कोशिशें अल्लाह की नजर में है वो देख रहा है, उसी के मुताबिक उसने जजा या सजा का मामला करना है। हमें वैसे रोकता कौन है? ये प्रायोरिटीज का, ये नहीं हम कह सकते कि हमारे पर कोई जुल्म है या कोई है, क्योंकि हमें कौन रोक रहा है, हमें तो कोई नहीं रोक रहा, ना अल्लाह के दीन की तरफ आने से, ना कुरान से, ना नमाज से, कोई नहीं रोकने वाला। ये हमारी अपनी चॉइसेस होती है ना जो हम मेक करते हैं, ये हमारी अपनी कोशिशें हैं, जिस चीज़ से हम मोहब्बत करते हैं हम उसके लिए कितना वक्त लगाते हैं। जिन लोगों को शॉपिंग का शौक है वो ऑनलाइन भी शॉपिंग करते रहते हैं बैठे, जिन लोगों को ये चैटिंग और इनका शौक है वो सारा दिन में, हालांकि सबके बच्चे हैं घर के काम है, कितने कितने घंटे फेसबुक पे बैठे हैं, कितने कितने घंटे ईमेलें और इन चीज़ों में लगा देते हैं। जिनको फ़ोन पे बातें करने का शौक है वो फ़ोन पे बात करते रहते हैं, वक्त निकालते ही है ना। तो बात ये होती है जिस चीज़ का इंसान को शौक लग जाता है ना वो उसके लिए टाइम निकालता है। आपके अमल से पता चल जाता है कि आपकी प्रायोरिटी नंबर वन जिंदगी में क्या है। अगर किसी का शौहर उसको कहे घर में दाखिल होते ही कहे कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और उसके बाद मारपीट शुरू कर दे उसको, उसके बाद उसको सताए, तंग करे, उसको नौकरों की तरह उसके साथ सलूक करें, तो क्या कहेगी वो कि इसको मेरे से बड़ी मोहब्बत है? वो कहेगी नहीं, ये झूठ है बिल्कुल, इसको मेरे से कोई मोहब्बत नहीं। क्यों? इसलिए कि इसका अमल ऑपोजिट है। इसी तरह हम लोग जब कहते हैं ना मेरी नंबर वन प्रायोरिटी तो अल्लाह की ज़ात है, मैं अल्लाह से इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं उसकी रज़ा चाहती हूँ, मैं तो दीन से इतनी मोहब्बत करती हूँ, ये सब हम बातें कहते हैं ना, लेकिन जब हमारा अमल उससे उलट है, बिल्कुल इस शौहर की तरह जो अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक कर रहा है, तो हमारी ये सारी बातें जो हम इतने इतने दावे कर रहे हैं ये ज़ीरो हो जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह की नज़र में। ये ज़ुबानी जेब खर्च से कुछ मामला नहीं चलना कि हम अल्लाह के सामने वहां पे ये नहीं तुलेंगे कि आपके डायलॉग क्या थे, आप कितने अच्छे डायलॉग बोल सकती थी, आपको कितनी बातें करनी आती थी। बातों के ऊपर वहां पे जन्नत जहन्नम के फैसले नहीं होने, किस पे होने? अमल पे। मैं या अमल मिसकाल ज़र्रतिन, क्या अमल था आपका? क्या आपने इस मोहब्बत के दावे को सबूत दिया अपनी अपनी जिंदगी में अपने आमाल से? क्या आपने वाकई साबित कर सके कि आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत है, उसके दीन से मोहब्बत है? अगर दीन आपकी नंबर वन प्रायोरिटी होगा ना तो आप इसको बेयर मिनिमम पे नहीं लेंगे कि कम से कम पे चलो गुजारा तो चल ही रहा है ना, अब और इससे ज़्यादा क्या करें, अब मुसलमान है ना बस ठीक है चल रहा है गुजारा। आप दीन को फिर टॉप पे रखेंगे, किनारे पे रह रह के इबादत नहीं करेंगे। दिन का अगर आप पूरे दिन का अपना हिसाब लगाएं आपको खुद पता चल जाएगा आपकी आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। मसलन आप सोचें, आप अपने पूरे दिन में मिसाल के तौर पे अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करती हैं या गीबत ज़्यादा करती हैं? आप ये देख लें कि आप पूरे दिन में अपने गप्पे ज़्यादा लगाती हैं या कुरान की तिलावत ज़्यादा करती हैं? आप अपने पूरे दिन में आप खुद अपने आप को सब इवेल्युएट करें, आप बातें ज्यादा करती हैं सच के ऊपर मबनी या झूठी बात ज्यादा करती हैं? खुद पता चल जाएगा कि हमने किसको आगे रखा हुआ और किसको पीछे किया, हम किसको अहमियत दे रहे हैं। क्योंकि देखें जब दुनिया से जाने का वक्त आना है ना तो ये जो चीजें जिनको आज हमने अहमियत दी हुई है ये सब पसे पुश्त चली जाती हैं, किसी को फिर ये नहीं ख्याल रहता। ये तो हम बाद में पूछते हैं ना, हाँ जी क्या छोड़ के गया, मरते वक्त कितनी जायदादें छोड़ी, ये तो हम सवाल करते हैं, ये तो हमारी सती, क्योंकि अभी हम इस ड्रीम वर्ल्ड में है ना, वो जो बेचारा जाने वाला होता है ना उसको तो यही पड़ जाती है कि आगे मैंने क्या जवाब देना, उसको नहीं ये फिक्र है भाई पीछे बच्चों के लिए क्या छोड़ा ही हूँ, कोई जायदादें छोड़ी भी हैं या नहीं, नहीं उसको फिक्र हो जाती है कि अल्लाह मैं क्या लेकर आई हूँ और मेरा इसके ऊपर वाकई क्या, मेरे मैं अल्लाह के अजाब से बच पाऊंगी या नहीं, मैं जहन्नुम से बच पाऊंगी या नहीं। हम सारी जिंदगी जैसे अभी ये इस सवाल के जवाब में हम खुद को धोखे में रखते हैं ना, इसी तरह सारी जिंदगी हम यही धोखे में रहते हैं कि अभी हमें तो जाना थोड़ी है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा, अभी मैं तो बहुत कुछ करना है, मैंने बहुत वक्त है, हम कौन सा कल जा रहे हैं जो हमें इतनी फिक्र करने की जरूरत है। बात यह है कि आज तो ना जवान का पता है, ना बूढ़े का पता है, ना बच्चे का पता है। आपके अपने सामने आपने वो वाकयात खुद देखे हैं अपनी आंखों से और यकीनन देखे होंगे, जिनमें आपने बच्चों को भी जाते हुए देखा, जवानों को भी जाते हुए देखा, और जो बिल्कुल यानी अब अपने बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं वो तो पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कभी किसी को बुढ़ापे में पहुंच के दोबारा जवानियां मिली हैं? क्या किसी को जब जिंदगी का बिल्कुल एंड टाइम आ जाता है क्या उसके बाद दोबारा जिंदगी मिली है? नहीं मिलती। ये जिंदगी दुनिया की जिंदगी सारी उम्र जिसको जिसके बारे में इंसान आखिरत के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं रखता, आखिर तो उसी जगह जाना है। ये लंबी लंबी दुनिया की ख्वाहिशात कर लें, आप प्लानिंग्स कर लें, बड़े घरों की बातें कर लें, गाड़ियों की, जेवरों की, कैरियर्स की, इन्हीं चक्करों में पड़े पड़े जिंदगी गुजर जाती है। आप जितना मर्जी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लें लाइफ का, आपको भागते भागते पता ही नहीं चलेगा कि कब टाइम ओवर भी हो चुका और घंटी बज जाएगी। घंटी बज जानी है और वो सबके लिए बजनी है। जो भी यहाँ पे हमारी ये इस जगह में बैठा हुआ है, आपका क्या ख्याल है आज से 50 साल के बाद हम कहाँ होंगे? हम में से कोई भी जो यहाँ पे बैठा हुआ है क्या जिंदा होगा? सिवाय कोई बच्चे होंगे तो शायद वो, लेकिन आप बताइए जो जो सुन रहे हैं सारे, आज से 50 साल के बाद कौन होगा यहाँ पे? 2050 में कौन होगा? जिस उम्र को हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद क्या हमें नई जिंदगी मिलने वाली है? आज हमें नेकी करने की फुर्सत नहीं है, आज हमें अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है, हमें फुर्सत नहीं है, आज टाइम नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा जब मौत के फरिश्ते लेने आएंगे तो हम कहेंगे कि हमें एक दफा चांस दे दो तो हम अब नेकी करें, हमें एक दफा थोड़ा सा मौका दे दो। और ये अल्लाह का कुरान कहता है, मैं नहीं कह रही, सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब फरिश्ते आते हैं इनकी जान निकालने के लिए तो आगे से कहते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम। तब तो कोई नहीं ये कहता थोड़ा सा टाइम चाहिए बच्चों की शादी के लिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी मैं बहुत बिजी हूं, अभी ना आओ, अभी जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है मरने का। कोई नहीं पूछेगा कि टाइम है या नहीं। अगर उनसे आप टाइम मांग सकते हैं तो जरूर मनमानी जिंदगी गुजारिए, जब आपका दिल चाहे तब आप निकियां कर लेना, तब आप अल्लाह की तरफ आ जाना। लेकिन अगर आप उनसे टाइम नहीं ले सकते तो किसी और पे नहीं, मैं कह रही अपने ऊपर रहम करें, अपने ऊपर। ये अपने ऊपर जुल्म करना है कि जब इंसान अपनी आखरत की फिक्र ना करे। हम आज सोचते हैं अच्छा कर लिया तो कौन सा बड़ी बात है, ना भी किया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। अल्लाह को तो पता ही है ना हमारे पास टाइम नहीं है, वो हम बड़े मसरूफ हैं, हम बड़े मजबूर हैं, वो और बाकी भी तो सब नहीं कर रहे, तो उनका फिर क्या होगा, वो जहां जाएंगे हम भी चले जाएंगे। तो देखें, याद रखें कि जहन्नुम जो है उसका एक लम्हा भी, एक लम्हा यकीन करें उसकी तो, यानी उसके अंदर दाखिल होना तो दूर की बात, काश वो लोग ये बात समझ जाएं कि उसको तो दूर से भी इंसान नहीं देख सकता, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि सिर्फ उसको हशर के मैदान में घसीट के लाया जाएगा। अभी कोई गया नहीं है उसमें, किसी को नहीं डाला गया, सिर्फ उसको फरिश्ते घसीट के लेकर आएंगे जहन्नुम को, और वो आपे से बाहर हो रही होगी, इतनी गुस्से में होगी और चिंगाड़ रही होगी, धाड़ रही होगी, और उसका बस नहीं चलेगा कि आज जितने हशर के मैदान में लोग हैं सबको हड़प कर ले। सिर्फ अभी जहन्नुम सामने आएगी, आज फर्स्ट टाइम लोगों ने जहन्नुम को देखा है, तो हालत क्या हो जाएगी इंसानों की पता है आपको? सब लोग सजदे में गिर जाएंगे और हर कोई कहेगा नफसी 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 नफसी, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, बस मुझे बचा ले। कोई नहीं किसी का सवाल करेगा, ना मेरे बच्चों को बचा ले। आज तो कोई खतरा देख के इंसान कहता है हाय मेरा तो कुछ हो ना हो, मुझे अपनी नहीं परवाह, मेरे बच्चे बच जाए। तो आप ये बताइए कि आज बच्चों का सवाल करते हैं लेकिन कल क्या है? कल सिर्फ अपना सवाल करेंगे, हर इंसान सिर्फ अपना सवाल करेगा कि अल्लाह मुझे इस जहन्नुम से बचा ले, अल्लाह मुझे इसमें ना डालना। लेकिन फिर भी आराम से हम कह लेते हैं अच्छा जब जहां पे सारे जाएंगे तो ठीक है, और अच्छा हमने कर भी लिया, ना भी किया तो कोई बात नहीं है। नहीं, बात है, क्योंकि कभी भी अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है। आपका क्या ख्याल है, अल्लाह अमल करने वाले और बेअमल को बराबर कर देगा? अल्लाह ताला कोशिशें करने वाले को और जो अपनी बेपरवाही के साथ जिंदगी गुजारता है उसको बराबर कर देगा? क्या अल्लाह ताला मुत्तकी और मुफसिद को बराबर कर देगा? नहीं। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, तुम कैसे फैसले करते हो, तुमने समझ लिया सारे बराबर हो जाएंगे, वहां पे जाके सब ने सारे भेड़ चाल होगी, हम भी धक्का मारते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जहां पे लोग जा रहे होंगे हम भी आंख बचा के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, इतना आसान नहीं है। देखें, ये जवानियां तो एक दिन रुखसत हो ही जाएंगी, जो तो बुढ़ापे पे पहुंच गए उनको भी सोचना चाहिए कि देखें ये ना हो कि एक दिन फिर वो हालत हो जाए कि बचपन खेल के खोया और जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया, ये वाला ना हाल हो जाए कि बचपन में तो खेल कूद में ही लगे रहे, बचपन में तो कोई होश ही नहीं था, बचपन में सोचा ही नहीं था, जवानी जो है ना वो नींद भर सोया, जवानी बेपरवाही, जवानी मौज मस्ती, ये ही कहते हैं ना हम। और बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आ गया तो फिर वो उसको देख देख के रोना ही रह गया था, बस और कुछ नहीं रहा, क्योंकि सारी जिंदगी तो गुजर चुकी थी। तो हमारा ये हाल ना हो जाए, क्योंकि एक दिन सबकी जवानी रुखसत होनी है। अगर आप में से कोई जवान बैठे हुए हैं, वो ये ना समझे कि हमने हमेशा ऐसे ही रहना है। अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं, रोक ले, कोई नहीं रोक सकता बुढ़ापे को आने से। वो एक दिन आएगा, एक दिन आपकी ये जो खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हैं झुर्रियों से भरेंगे, जितने मर्जी अपने कॉस्मेटिक सर्जरियां कराएं, जो मर्जी करें, एक दिन आंखों पे चश्मे भी लगेंगे, एक दिन कानों पे आले भी लगेंगे, अगर जिंदगी रही तो, अगर अल्लाह ने इतनी मोहलत दी तो। और वही इंसान होते हैं कि एक दिन बैसाखियों के सहारे चल रहे होते हैं, वो इंसान होते हैं ना जो अकड़ अकड़ के चलता है इंसान, वो एक दिन दो लोगों का सहारा, एक ने इधर से पकड़ा हुआ, एक बाजू इधर डाला हुआ, एक इधर डाला हुआ, और चल रहे होते हैं। और वो ही इंसान होता है कि वो जो जिसको कभी सरदर्द के अलावा कभी उसने टायलनॉल भी नहीं खाई होती, वो अस्पतालों में बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रहे होते हैं। देखा है हमने, अपनी आंखों से देखा है, हम सब ने देखा होगा। ये वही लोग हैं ना कि जो घर की मल्लिका थी एक दिन, जो किसी को खातिर में नहीं लाती थी, जो कहती थी मैं ही हूं ना, मैं ही घर चलाती हूं, और मैं ना हूं तो देखो घर कैसे चलेगा। एक दिन इसी इंसान का ये हाल हो जाता है। तो ये हमेशा के नहीं है, ये जलवे हैं दुनिया के, ये इसकी रंगीनियां, इसकी रौनकें, इनसे धोखा ना खाएं कि ये हमेशा रहेंगी, ऐसे ही पता नहीं चलता रहेगा, ऐसे ही हमारी हिम्मतें और हमारी ताकतें और ये सब ऐसी चलती रहेंगी। कितना बेवकूफ़ है ना इंसान जो इन चीज़ों से जी बहला रहा है जो चली जाने वाली है ना, कितना नादान है वो जो जल्द ख़त्म हो जाने वाली है। सारा दिन इंसान जो है ना इन्हीं के पीछे भागता रहता है, जिनमें से कोई चीज़ भी साथ जाने वाली नहीं। तो वो मुसाफिर जिसको पता है कि मंजिल तक पहुंचने में बहुत, मुझे बहुत फासला है अभी, बहुत दूर है अभी, उसको किस स्पीड से जाना चाहिए, मुझे इस टाइम तक फलां जगह पहुंचना है, टाइम थोड़ा है और फासला ज़्यादा है, उसको उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? बहुत तेज़ होनी चाहिए ना, तेज़ चलेगा तो मंजिल तक पहुंचेगा। हमने अपनी आधी जिंदगियां तो गुजार दी, आप में से कोई जवान बैठे हुए हैं, कोई बूढ़े बैठे हुए हैं, तो आधी तो जिंदगियां गुजर गई, अब जो बाकी रह गई उसमें स्पीड क्या होनी चाहिए? क्या उसी स्पीड से चलना चाहिए? नहीं, जो जिस स्पीड से बच्चा चल रहा है क्या उससे चलेंगे? नहीं, अब तो बहुत तेज दौड़ना है कि वक्त कम है। मैंने मिसाल पहले भी एक दफ़ा दी थी कि देखें, ये जो दुनिया इम्तिहान की जगह ना, तो इम्तिहान में क्लासरूम में आपको क्या होता है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है ना यूजुअली, उस 3 घंटे के अंदर आपको मसला न के 12 सवाल हल करने हैं। तो जो पहला घंटा इधर उधर देखने में गुजार दे, अच्छा ये देखूं, क्लासरूम देखूं, लोगों को देखता रहे, उसके अभी 12 सवाल पड़े हुए और घंटे अब 2 रह गए। जो 2 घंटे भी गुजार दे, उसके पास सवाल तो उतने ही हैं, घंटा अब 1 ही रह गया। अब उसको क्या, अगर उसने करने हैं ये सवाल हल, तो उसको तेजी के साथ करने पड़ेंगे, इतनी तेज करने पड़ेंगे कि इस 1 घंटे में उसने सारे सवालों के जवाब देने हैं। कुछ के पास 3 घंटे पड़े हो सकते हैं, कुछ के पास 2 घंटे पड़े हो सकते हैं, और कुछ कुछ का आखिरी घंटा चल रहा है। हम में से किसी को, जो जवान है वो ये ना समझे कि मेरे 2 घंटे, इसलिए कि हमें नहीं पता कि जवानी में ही क्या पता हमारी मौत आ जाए, कल हमारा है या नहीं है, तो हमारा हो सकता है ये आखिरी घंटा हो। और जो बुढ़ापे में वो तो ये सोच ही लें कि अब तो आखिरी घंटा चल रहा है। जो बच्चा है उसके पास, अगर किसी को पूरी जिंदगी मिलती है तो चलो उसके पास तो 3 घंटे हैं, और जवान चलो अगर उसको भी मिलता है बुढ़ापा तो उसके पास भी 2 घंटे रह गए, 1 घंटा तो उसका भी जाया हो चुका है। जो बुढ़ापे में पहुंच चुका है वो किसका इंतजार कर रहा, क्या घंटी बजने का? जब घंटी बज गई तब तो वो पर्चे छीन लिए जाएंगे, तब तो कुछ लिखने नहीं दिया जाएगा, फिर वो किसका वेट कर रहे हैं, किसका इंतजार है आपको? क्या अल्लाह के फरिश्ते आए और बुलाएं? क्या कयामत का दिन बरपा हो जाए तब आएंगे? कौन सी चीज बुलाएगी, कौन सी चीज जगाएगी? तो एक दफा याद रखें, इस दुनिया की सरहद को इंसान क्रॉस कर गया, फिर अगली दुनिया में चला गया, फिर कभी वापसी नहीं है। फिर नहीं आके देखना ये मेरे जो मैंने घर डेकोरेट किया था उसको कोई मेरी बहू संभाल भी रही है कि नहीं संभाल रही, और वो मेरी बेटी ने कैसे रखा हुआ है, और मेरे बच्चे का बच्चों का क्या हाल है, और मेरे बिजनेस का क्या हाल हुआ मेरे पीछे से, और मेरे बैंक बैलेंस का क्या हाल हुआ, और मेरे जो जेवर जिनको मैं रखती थी संभाल संभाल के, वो उन्होंने सही तरह संभाले भी हैं या नहीं मेरे बच्चों ने, कोई नहीं आके देखेगा। इन चीज़ों के पीछे आप वक्त लगा रहे हैं ना, इनको वापस मुड़ के आके देखने की भी नौबत नहीं आएगी, वंस यहाँ से चले गए। तो इसलिए आज इस जिंदगी में आपको चांस मिला है, ये चांस रोज रोज नहीं मिला करते, ये एक ही चांस है जो अल्लाह ने दिया है, ये एक ही जिंदगी है, जिंदगियां दो दफा नहीं मिलनी। इस एक जिंदगी में अपने आप को इस तरह से रखें, ऐसे इतनी जिंदगी गुजारें कि अल्लाह को राजी करके हम दुनिया से जाएं, हम ऐसे जिंदगी गुजारें कि जब हम मरने लगे तो अल्लाह हमसे खुश हो, अल्लाह ताला हमसे राजी हो, तभी हम कामयाब हैं। ये जो कामयाबियाँ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना, कोई पास हो गया आप उसको ग्रेजुएशन की मुबारकबाद दे रही हैं, कोई किसी को जॉब मिल गई उसको मुबारकबाद दे रही हैं, ये क्या कामयाबियाँ हैं, ये क्या कामयाबी। असल कामयाबी वो है कि जो हमेशा की ज़िंदगी में कामयाब हो गया, जो जन्नत में चला गया और जहन्नुम से बच गया, वो है कामयाबी। उस कामयाबी के लिए कोशिश करें, वो है असल खुशी, वो है असल मुबारकबादी देने का मकाम। बाकी तो सारी चीज़ें क्या हैं, आज किसी को जॉब मिलेगी कल छूट भी सकती है, आज किसी को डिग्री मिली कल उसी डिग्री को ले लेके दर दर फिरता भी रह सकता है, जॉब के लिए बेचारे को जॉब भी नहीं मिलती, वो उस डिग्री का क्या फ़ायदा है। आज किसी की औलाद हुई कल को वही औलाद उसके लिए सर दर्द बन गई, तो किस चीज़ की मुबारकबाद है। यहाँ की तो कोई भी कामयाबी कामयाबी नहीं है, यहाँ की कोई खुशी देर पा नहीं है, टेम्परेरी है सब कुछ। इस टेम्परेरी की खातिर अपनी आखरत का सौदा ना करें, अपने इस वक्त में सिर्फ जो जिंदगी का वक्त निकला है, जितने भी आपके मसले मसाइल हों, हर कोई कहेगा मेरा ये मसला है मेरा ये, लेकिन जितने भी आपके मसले हों, इन्हीं में से आपने वक्त निकालना है, इन्हीं में से आपने टाइम देना है, कोई और से ज़िंदगी नहीं आएगी, कहीं और से वक्त नहीं मिलेगा, इसी वक्त में से वक्त निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपसे सबसे मेरा सवाल है कि क्या आप वक्त निकालने को तैयार हैं अल्लाह की खातिर, क्या वाकई आप समझते हैं कि मुझे अल्लाह को राज़ी करके जाना है, क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि उसने हमें कुरान दिया जिसमें हमें सारी बातें बता दी, आखरत की सारी बात बता दी। अब ये है कि उस ये अल्लाह की रहमत है, क्योंकि अगर हम उस दिन यहाँ पे हमें नहीं पता होता, और उस दिन वाकई जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा उनको नहीं पता होगा, उस दिन तो उनके लिए शौक होगा, ओ ये क्या हो गया हमें तो नहीं पता था इस चीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है कि उसने इस कुरान को हमें दिया। अब आगे आपका काम है कि आप कदम बढ़ाइए इसकी तरफ, इसको सीखिए, इसको समझिए और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। ये कुरान अगर आप वाकई सीखते हैं, ज़रूर यकीनन आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, आप अल्लाह को राज़ी करने के काबिल हो जाएंगे, आपको पता चलेगा मेरे रब की पसंद और नापसंद क्या है, आपको खुद हिम्मत आएगी, इतनी ताकत आपके अंदर आएगी कि आप शैतान से लड़ सके। बेशक मैं नहीं ये कहती कि कोई आप पैगंबर बन जाएंगे या कोई आप औलिया अल्लाह बन जाएंगे, लेकिन एक कम से कम जिस स्टेज पे आज आप हैं इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, और ये आती है, और ये सिर्फ कुरान से आ सकती है, सिर्फ दर्स सुनने से, इस तरह थोड़ी देर के लिए सुन लिया उसके बाद आगे 6 महीने आराम से बैठ रहे, फिर किसी ने अगर बुला लिया तो वहाँ पे चले गए और वहाँ पे सुन लिया, फिर 1 साल के बाद कहीं और सुन लिया, इससे नहीं बदलावे आते। इसको रेगुलर बेसिस पे जब तक इंसान ज़िंदगी में शामिल ना कर ले, उस वक्त तक इंसान के अंदर वो चेंज नहीं आ सकता। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप इंशाल्लाह ताला कोशिश के साथ इंशाल्लाह कुरान को सीखिए, जिस एज में भी हैं आप बूढ़े हैं तब भी कम से कम अल्लाह के पास जाएं तो हम ये भी तो कह सकें कि या अल्लाह अब हमने इस तरफ आने का इरादा कर ही लिया था, अल्लाह इस रास्ते पे चल पड़े थे, वो अलग बात है ज़िंदगी ने इतनी मोहलत ना दी, लेकिन अल्लाह हम तो चल पड़े थे, अल्लाह हम तेरे कलाम के तेरे दीन को सीखने के रास्ते में हमें मौत आई है, कम से कम ये तो कह सकें। तो लेकिन अगर आपको दिलचस्पी नहीं है और आप इससे जान छुड़ाते हैं या आपको ये नहीं, तो फिर ये भी सोच लीजिएगा कि अल्लाह को हमने जवाब क्या देना, फिर वो जवाब भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये सिस्टर आयशा ने ज़रूर आपको दिए होंगे कार्ड्स वगैरह भी दिए होंगे कि हमारी क्लास एवरी फ्राइडे को होती है, सुबह आपके वहाँ के टाइम के मुताबिक 8:15 से 11:15 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप क्लास जुमे के दिन सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सुन सकते तो सैटरडे को भी क्लास रीप्ले होती है, जो लोग जॉब करते हैं वो लोग सैटरडे को सुन सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ते हैं, इससे अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम करता है, कोई अल्लाह की बात सुनते हैं दिलों पर असर करती है, वरना आहिस्ता आहिस्ता जब हम अल्लाह के कलाम से दूर होते हैं ना तो अल्लाह से भी दूर हो जाते हैं, पता है आपको, अल्लाह से भी दूर हो जाते हैं। और फिर हमारे जब हम अल्लाह से दूर होते हैं हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, फिर हम कहीं बैठे सुनते भी हैं तो हमें इतनी परवाह ही नहीं होती, दिल पे कोई चीज़ असर ही नहीं करती, क्योंकि दिल सख्त हो गया ना, दरवाजे बंद हो गए, पत्थर बन जाते हैं दिल, फिर सीनों में दिल नहीं होता, पत्थर रखे होते हैं। तो इसलिए इनको नरम करने का नुस्खा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था, इसका जंग दूर करने का, दिल रस्टेड हो जाते हैं, जंग आलूद हो जाते हैं, इनका जंग दूर करने का तरीका बताया कुरान, ठीक है। तो इसलिए इस कुरान को ज़िंदगियों में शामिल करें। अगर इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखे हुए हैं तो आप ज़रूर फिल करके जाइएगा, अगर नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट का एड्रेस इसके ऊपर कार्ड्स पे लिखा होगा, आप इनसे यहाँ पे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कराएं, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई इसके ऊपर पैसे नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई आपको इसमें कुछ देना नहीं पड़ेगा सिवाय अपने वक्त के, सिर्फ हम कहते हैं अपना थोड़ा सा वक्त देते हैं हमारे लिए नहीं, अल्लाह के कलाम के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ज़िंदगियों में सुकून भी आएगा और आपको वाकई लगेगा कि आपको आंखें मिल गई हैं, और आपको यकीन करें आप कुछ अरसा ये क्लास लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो अंधी थी और मुझे बिनाई तो अब मिली है, ठीक है। आप जितनी भी एज के हो गए आपको लगेगा इतने सालों में भी मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, आज ही पता चला। तो अल्लाह का कलाम ऐसा बड़ा मोजज़ा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह क्लास को ज्वाइन करेंगे, आप ज़रूर सीखेंगे, और इंशाल्लाह हमारा यहाँ पे बैठना ये सिर्फ एक बार का ना हो, अल्लाह ताला इसको हमेशा का हमारा दुनिया का भी साथ बना दे और जन्नत के भी हमें साथी बना दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस मजलिस में बैठना कबूल फरमाए, जो जो जहाँ जहाँ से आए हैं अल्लाह ताला सबका आना और जाना कबूल फरमाए, इसको नफा मंद मजलिस बना दे हमारे लिए, और अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे इस सीखने को भाई से खैर बना दे। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कोशिश करिएगा जब यहाँ से उठ के जाएँ तो फॉर्म फिल करके जाएँ, रजिस्टर करा के जाएँ, और अल्लाह से दुआ ज़रूर करिएगा कि या अल्लाह ताला तू अब ये मैंने कदम उठाया ना तू इसको कबूल कर लेना अपने रास्ते में, और ए अल्लाह मुझे साबित कदमी अता फरमाना, ठीक है। सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।